باب نقیع الثوب بعد المسك. جب تک نساء پیدا نہ ہو اس وقت تک نبیزوں کے پینے کے بیان میں یہ بات ہے. اور یہ کھجور کے نبیز سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرما رہے ہیں. اس باب میں جو روایت ہے وہ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ سے ہیں. فرماتے ہیں کہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اس کے حوالے سے شادی کے موقع پر. اللہ تعالیٰ کے شادی کے موقع پر بلایا جا سکتا ہے, بلانا چاہیے, چاہے پہلا نکاح ہو چاہے دوسرا نکاح ہو, آدمی کی ہمت ہونی چاہیے. حکانت مراد کو خادم ہوں گے دن کو بلا ہوں اس کو. تو اس وقت جو ہے ان کی بیوی وہ صحابہ اکرام کے خادم تھی, طرح آنے کے وہ بیوی تھی, دلہن تھی. فقالت, تو وہ کہتی ہیں کہ ما تدرون ما عن قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے جو نبیز بنائی تھی وہ کون سی تھی. فرماتے ہیں کہ ان قاتل ابو تمرات من اللیل فی دوری, کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے رات ہی میں کھجوروں کی نبیز بنائی تھی گردن کے اندر. تھوڑا سا روایات میں فرق ہے, روایات تقریباً ایک جیسی نظر آتی ہیں, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روایت سے اسی روایت سے کئی باتیں اگر ثابت ہو رہی ہوں تو وہی باتیں الگ 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 طور پر ثابت کرنے کے لیے اسی روایت کو نقل فرماتے ہیں. تو یہاں پر قبر کے بارے میں فرمایا کہ جب تک نشہ پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی استعمال فرمائی, تو نشہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا پینا پھر جائز نہیں ہوگا. اس کی ظاہری علامت کیا ہے؟ جو ظاہری علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک گاڑا پن پیدا ہو جاتا ہے, جھاگ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اس کی بو بدل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ جب شادی کے موقع پر اللہ کے نبی کو دعوت دیے تو فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی اس وقت خدمت کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کے پاس کے صحابہ کے پاس کیسے جو ہے نا ان کی بیوی خادمہ ہیں. جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو واقعہ ہے حجاب کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے, پردے کا حکم جو نازل ہوا وہ تقریباً 5 ہجری میں نازل ہوا, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردے میں رہ کر وہ خدمت انجام دے رہی ہے, چادر وغیرہ بڑی سی اوڑھ لی ہو, جلبہ وغیرہ پہن لیا ہو اور اس کا خدمت انجام دے رہی ہے. تو بہرحال خواتین کا خدمت انجام دینا یہ صحیح ہے, شرط یہی ہے کہ لوگ حجاب میں رہیں, پردے میں رہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ دلہن ہوتے ہوئے خدمت کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی, یہ بھی بڑی بات ہے, بڑے گرو کی بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور آ جائے تو دلہن دلہن نہیں رہتی پھر کسی کے پاس حضور کے لیے. یعنی آج سب سے بڑی خوشی کی بات وہی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر آ جائیں تو ساری نزاکتیں وغیرہ نفاست سب اپنی جگہ, حضور کی خدمت سب اپنی جگہ, حضور کا اکرام اور ضیافت اپنی جگہ. تو اس وقت وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے جو نبیزیں بنائی تھیں آپ لوگ جانتے ہیں. پھر بتانے لگی کہ رات ہی سے میں کھجوروں کے پانی میں ڈال دی تھی اور وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں نے پیش کر دیا, حضور نے اس کو تناول فرما لیا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ماں حضرت جو بھی ہو انسان کو پیش کرنے کے لیے بطور ضیافت پیش کر دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ قبول کرنے والے کو قبول کر لینا بھی چاہیے, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے گھر کو گئے تو ہم کو یہ کھلا دیا, ہم کو یہ کھلا دیا, اتنے ہی پر اکتفا کر لیا. یہ بھی کوئی شکایات ہو جاتے ہیں خاندانوں کے اندر کہ ہم شادی کے عنوان سے گئے, کسی اور عنوان سے گئے تو ہمارے سر پہ زیادہ یہی تھا. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ضیافت اور سعادت کسی کی نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر وہ رات میں کھجور پانی میں ڈال دی تھی, وہی جو ہے نا اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا. اور ہمارے زمانے میں اگر یہ چیز پیش کرتے ہیں اس طرح کھجوروں کو پانی میں رکھ کے, وہ پانی اور کھجور اگر کسی کے سامنے رکھتے ہیں آدمی ناگواری محسوس کرے گا اس کو. لیکن یہ تکلف ان کے مزاج میں نہیں تھا, سادگی مزاجوں میں تھی. جو ماہ حضر ہوتا تھا خود بھی کھاتے تھے اوروں کو بھی کھلاتے تھے, और उसी पर जो है वो इक्तफा भी किया करते थे। उसके बाद है बाबुल बाद अकीक मन्ना खान की मुस्लिम ने लशतुबा शराब में बाजिफ के बयान में, ये बादक और बाजिफ इस शराब के बयान में ये बाब है, और हर उस शराब के बारे में कि जो जिसके अंदर नशा पैदा हो जाए उसकी ममानात के बयान में ये बाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी असल में पकाई हुई भी जो शराब होती है उसको कहते हैं, जो अंगूर का शीरा होता है जिसको पका दिया जाए उसको बाजब कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाजब नाम की शराब नहीं थी, बाद में जो है ना ये किसी वजह से ये नाम पड़ गया और इस्तेमाल होने लगा। तो आपस में सहाबा इकराम ने इसका जिक्र कर दिया कि भाई ये सही है या नहीं है, तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया था उस मौके पर कि अल्लाह के नबी के ज़माने में तो ये नाम वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन याद रखो मसला कि हर चीज़ जिसके अंदर नशा पैदा हो जाए तो वो सही नहीं है हमारे लिए। तो ये रिवायत है और इसमें और भी सहाबा के आसार वगैरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि वरहा उमर व अबू उबैदा व मुआद शुरबत इलाही अला सुलसी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तिहाई पकी हुई शराब को जो है वो जायज़ समझते थे। देखें, एक है पानी में खजूरों का, किशमिश का, अंगूर का डाल के छोड़ देना, उसके बाद इंतज़ार करना उसका, तो उससे नशा पैदा होता है तो देर में पैदा होता है, तो जब तक नशा पैदा ना हो उसको पिया जा सकता है। और एक ये है कि खजूर अंगूर वगैरह ये पानी में डालकर पकाया जाए उनको, इसमें जो है ना शराब बहुत जल्दी बन जाती है, तो अगर पका दिया जाए तो फरमाते हैं कि पकी हुई होने की हालत में भी इस मशरूब को पिया जा सकता है, शर्त यही है कि उसके अंदर नशा पैदा ना हो, चाहे वो कच्चा हो चाहे पका हुआ हो उसको पीना सही है। तो फरमाते हैं कि हज़रत उमर भी, हज़रत अबू हुरैरा भी, हज़रत मुआद भी एक तिहाई जब यानी पानी डाल दिया गया और एक तिहाई जो है ना उसका हिस्सा पत्ते 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 ख़त्म हो गया, तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने नबीस पी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस वक्त की बात है जबकि उस अंगूर के शराब के अंदर, अंगूर के मशरूब के अंदर जो है नशा पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए पिया था। वरना तो आगे खुद हज़रत उमर की रिवायत आ रही है कि अपने बेटे को कोड़े लगवाए थे उन्होंने, उनके बेटे उबैदुल्लाह ने जो है ना शराब पी ली थी, तो तहकीक करवाई, तहकीक से साबित हो गया तो फिर कोड़े मारा। तो फरमाते हैं कि वह शरीबा अलबरा अबू जुहैफा अला नस्बी, हजरत बरा इब्न आज़िब हैं, हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, तो इन लोगों ने भी आधी होने पर शराब को जो है ना पिया था, यानी उसको पकाने पर, पकाते पकाते आधी हो गई आधी बाकी रहेगी, आधी पक गई और आधी बाकी रहेगी, जैसे दूध को पकाते हैं एक लीटर पका पका कर आधा लीटर वो हो जाता है, तो इसी तरह शराब को भी इन लोगों ने पकाया 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 जब आधी बाकी रह गई तो वो भी उन लोगों ने पिया। ये उस वक्त की बात है जबकि अभी इसमें नशा पैदा नहीं हुआ था। इसी तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि इशरब अल-असीरा मा दामा तरीयन, अंगूर की जो शराब होती है जब तक ताज़ा हो तो उसको तुम पी लो, क्योंकि इसमें नशा नहीं होता इसलिए। उसके बाद फरमाते हैं वक़ाल उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वजदतु मिन उबैदिल्लाह रीहा शराबी, एक मरतबा मैंने उबैदिल्लाह से जो है ना वो शराब की बू पाई, व अना सायलुन अन्हु और मैं उनके बारे में पूछने वाला हूँ, फ़इन काना युस्किरु जलदतुहु, अगर जो है ना वो नशा कर रहे हैं यानी उससे नशा पैदा हो गया हो तो मैं उनको कोड़े मारूंगा। रिवायतों में ये है कि हज़रत उमर ने बाद में इस बारे में तहकीक फरमाई और तहकीक करने पर साबित हो गया कि उसके अंदर नशा पैदा हो गया था, तो फिर बेटे को 80 घोड़े लगाए। इस्लाम के अंदर शरी जो हद है शराब पीने के ऊपर जो है ना वो 80 घोड़े, चार जुर्म हैं इस्लाम में जिसके करने पर सजा है और ये बहुत बड़े हैं, उनमें से एक जो है ना नशा भी। एक तो ये है कि आदमी झूठ बोले तो चोरी करे तो चोरी करने पर हाथ के काटने की सजा है, बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम के अंदर, सीधा सीधा गट्टों से हाथ काट दिया जाएगा और बाद अइमा के नज़दीक उसके बाद जलाया भी जाएगा फिर हाथ को फौरन ही, ताकि जो है ना खून वगैरह बंद हो जाए। लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म है कि आइंदा फिर इसकी हिम्मत ना हो। बज़ाहिर जो है ना ये समझ में आता है कि भाई ये जुर्म और ज़्यादती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस्लाम का जो निज़ाम है वो निज़ाम अमन कहलाता है, एक का अगर हाथ कट गया तो फिर उसके बाद कभी उस माशरे में और उस मुल्क में जहाँ पर ये चीज़ की हद नाफिज होगी तो फिर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आज कानूनी तौर पर कितनी सख्त सजाएं आप बना लें और दे दें लोगों को, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका आप यानी हुकूमत से चोरी छुपे कर देना बड़ा मुश्किल, यानी हर आदमी के लिए आसान चोरियों का करना बल्कि होती रहती हैं, इस वक्त है होती रहती हैं वो, लेकिन इस्लाम में एक तो यह है कि हद ऐसी नाफिज की गई है कि आदमी एक तो दोबारा उसके करने की हिम्मत नहीं कर पाता, दूसरा यह है कि इंसान के लिए अकीदे आखिरत की तरतीब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, तो ये दोनों अकीदे मिलकर जो है ना इंसान को बड़ी हद तक जराइम से रोक देते हैं, यहाँ तो हम जुर्म कर लेंगे आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला से कैसे बचेंगे। तो बहरहाल एक तो चोरी है जिसके करने पर हद है, हाथ काटने का हुक्म है, दूसरा यह है कि जिना है, शादीशुदा आदमी अगर जिना करता है तो और वो साबित हो जाए जिना, और जिना के साबित होने के लिए भी बहुत कड़ी शर्तें हैं, फिर तो अगर साबित हो जाता है तो फिर उसके ऊपर संसार करने का हुक्म है, संसार का मतलब ये है कि गड़ा घोला जाएगा सीने तक, और उसमें आदमी को या औरत को जो है ना वो डाल दिया जाएगा, और उसके बाद पत्थरों से मारा जाएगा यहाँ तक कि मौत हो जाएगा। बड़ी सख्त सजा है इसके ऊपर। और एक है कत्ल, कत्ल करने पर जवाबन जो है ना वो कत्ल करने का हुक्म है। कोई आदमी किसी को आमदन कत्ल कर दे, जैसा हमारे माशरे में होता है, तो सज़ा यह है कि क़िसासन उसको कत्ल कर दिया जाएगा फिर। और चौथी चीज़ है शराब, जिसके पीने पर शरीयत में हद है, तो और वह हद यह है कि 80 कोड़े लगाए जाएंगे फिर। और जिना करने वाले मर्द अगर शादीशुदा नहीं है तो उनके ऊपर 100 कोड़े मारने का हुक्म है। शादीशुदा हैं तो उनको संसार पत्थरों से मारा जाएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर उनको 100 कोड़े मारने का हुक्म है। बाकिया जो जराइम हैं उनके करने पर अमीर मोमिनीन पर जो है ना ये मसला मौकूफ होता है कि वो उनको उनकी तादीब के लिए, उनकी इसलाह के लिए जो सज़ा तजवीज़ करना चाहे कर सकता है। अब उनको कोड़े मारना है तो कोड़े मारें, जिला वतन करना है तो जिला वतन करें, कैद करना है तो कैद कर दे, या जो भी उसकी सवाबी का मौकूफ होता है हालात के एतबार से और आदमी के जुर्म के एतबार से जो सज़ा तजवीज़ करना चाहे वो कर सकता है, उसको ताज़ीरात कहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे पर जो है ना कोड़े लगाए हैं। इस्लाम जाहिर सी बात है कि अमीरीन होते तो उमर फारूक इसी वजह से कहा जाता है, उनको फैसला करने वाले थे यहाँ पर बाकी के दरमियान में, और अल्लाह के हुदूद को कायम रखने वाले थे। जुमे में जो बात आई थी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जब खुलफाए राशिदीन अल्लाह के नबी के मजलिस में थे, और सहाबा इकराम पहले अल्लाह के नबी ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों का जिक्र फरमाया, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया, उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। उनमें से एक ये भी थी, ये दो 3 चीज़ें हजरत उमर फारूक को पसंद थी, वो यही थी कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, एक तो अमर बिल मारूफ करना, दूसरे मुनकरात से रोकना, तीसरे अल्लाह के हुदूद को कायम करना दुनिया के अंदर, निज़ाम इस्लामी को कायम करना, इस्लामी अहकाम को नाफिज करना। बड़े सख्त थे इस मामले के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। रिश्तेदारी वगैरह कुछ नहीं है, अल्लाह का हुक्म आ गया, बेटा है आदमी तो यहाँ आज हमारे ज़माने में तो रिश्वतें दी जाती हैं इसके लिए, चश्मपोशी कर दी जाती है, छुपा दिया जाता है जुर्म को। जाहिर सी बात है कि दुनिया में आदमी छुपा लेगा लेकिन आखिरत में क्या करेगा फिर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने भी एक मरतबा, एक वाक़ ऐसे ही हुआ था कि कबीले बनू मखज़ूम के खातून ने चोरी कर ली फतेह मक्का के मौके पर, और चोरी साबित हो गई, चोरी के साबित करने पर जो है ना हाथ के काटने का हुक्म सादिर हो गया। तो अब सहाबा परेशान हो गए कि करें तो क्या करें, तो अल्लाह के नबी से सिफारिश करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए किसको भेजेंगे, मसला हुआ। तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ख्याल हुआ कि उनको भेजेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा करीब हैं। भाई तो उसामा गए जाकर कहने लगे, तो हुज़ूर ने फरमाया कि अभी बनी इसराइल इस वजह से हलाक हो गए थे कि उन लोगों ने उनके शरीफ जो है ना जब जुर्म करते थे वो छुपाते थे, और जब ज़ाइफ लोग जुर्म करते थे उस पर सज़ाएँ नाफिज़ करते थे, इस उम्मत में भी हलाकत आएगी। उसके बाद हुजूर ने बड़ा सख्त जुमला इशार फरमाया कि याद रखो, लो हजरत अगर फातिमा बिनत मोहम्मद भी चोरी करेगी तकता तो जदहा तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। उनके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के हुदूद को कायम करने में अल्लाह के नबी भी और फिर सहाबा इकराम भी इतने ज़्यादा सख्त थे कि किसी की रियायत नहीं होती। उसके बाद रिवायत है हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू जुवैरिया से रिवायत है, फरमाते हैं कि हजरत इब्न अब्बास से अनबाद मैंने इब्न अब्बास से बाजत नामी शराब के बारे में पूछा, फ़काल है तो उन्होंने फरमाया कि सबक मोहम्मद अस्कर हो हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले ही सबकत कर चुके, यानी शराब के वजूद में आने से पहले, शराब को इनाम दिए जाने से पहले, यानी हुजूर के ज़माने में ये शराब नहीं थी, ये तो बात की शराब है, लेकिन नाम चाहे बदल जाए, नशा अगर पैदा हो गया तो फिर वो हराम है। अब चाहे उस पर हलाल का हुक्म लगाएं, हराम का हुक्म लगाएं, नाम जो भी लगाएं, तो फरमाया कि फमा अस्कर फहुआ हराम, जो भी नशा पैदा हो जाए, जिससे भी नशा पैदा हो जाए, या जो शराब भी नशा पैदा कर दे तो वह हराम है। उसके बाद फरमाया कि अशराब उल हलाल तय्यब, कि हलाल शराब जो होती है वो पाकीज़ा होती है, और फिर फरमाया कि लैस बाद अल हलाल तय्यब इल्ला अल हराम अल खबीस, और पाकीज़ा और हलाल के बाद जो है ना नहीं होता है मगर हराम अल खबीस। यानी फरमाया कि जो मशरूबात हलाल हैं, जो नबीस की शक्ल में हैं, या उसके अलावा जो हलाल मशरूबात हैं वो हलाल है, वो पाकीज़ा है, उनको पिया करो, और जिसके अंदर नशा पैदा हो गया तो वह हराम अल खबीस है, उनको छोड़ दिया करो। उसके बाद है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, फरमाती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा अव अल असल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद था, यानी मीठी चीज़ जो है ना वो और शहद, वो दोनों चीज़ें अल्लाह के नबी पसंद से इस्तेमाल फरमाया करते थे। अब या तो इसके अंदर ये भी शामिल है कि नबीज़ें वगैरह भी चूँकि मीठी होती थी इसलिए अल्लाह के नबी को वो भी पसंद थी, या उसके अलावा कोई और मीठा हो तो वो भी अल्लाह के नबी पसंद फरमाया करते थे। उसके अलावा शहद भी था, ये भी पसंद था। اور آپ اس کا استعمال بھی فرماتے تھے، شہد کے استعمال کی فضیلتیں بھی ہیں، پھر اس کا استعمال کرنا چاہیے آدمی نے کم از کم مہینے کے شروع میں، کم از کم مہینے میں 3 دن اس کا استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر نہار میں، اس سے بڑی بڑی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ حدیثوں میں مضمون موجود ہے کہ شروع مہینے میں اگر آدمی 3 دن استعمال کر لے، اس کے بعد مہینہ بھر استعمال نہ کرے تو کافی ہے، بڑی بڑی بیماریاں اللہ پاک اس سے جو ہے نا دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو نہریں رکھی ہیں ان میں سے ایک شراب بھی ہے، شہد کی بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ مرغوب ہو سکتی ہے، اللہ پاک نے شراب کے طور پر جنت میں وہی رکھا ہے۔ ایک ہے پانی جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے اور مرغوب بھی ہے، وانہار من، اور ایک ہے شہد اور ایک ہے شراب وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں سے جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ شہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جب اس کا نظام فرمایا تو سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ بڑی کام کی چیز ہے جس کا اللہ نے جنت میں بھی انتظام فرمایا۔ یہ اور بات ہے کہ بھئی دنیا میں اور دنیا کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی یہ یعنی اس کے خواص کے اعتبار سے، مزے کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے وہ کیسی ہیں، کیونکہ خود حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے۔ اور آگے کا جملہ بڑا زبردست ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ایسی نعمتیں۔ نعمتیں تو یہاں ہمارے سامنے بہت ساری ہیں جنت کی، اور یہاں نام بہت سارے مل جاتے ہیں کہ بھائی انگور ہوگا، کھجور ہوگا، پناہ ہوگا، باغات ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم وہاں کے باغات کو یہاں کے باغات پر قیاس نہیں کر سکتے، اور ان باغات کو دیکھ کر وہاں کے بارے میں اندازہ قائم نہیں کر سکتے۔ وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ نے نعمتیں ہمارے لیے تیار فرمائی۔ اس کے بعد ہے باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدامين۔ دو چیزوں کو ملا کر شراب بنانے سے اور دو سارنوں کو ملا کر کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دو چیزوں کو ملا کر شراب بنانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو فساد جلدی پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ بھئی ایک چیز کھٹی ہوگی، ایک چیز میٹھی ہوگی، ایک جو ہے جلدی ایک چیز جلدی پک جاتی ہے، ایک چیز جلدی نہیں پکتی۔ چاول لیتے ہیں مارکیٹ سے بریانی اگر بنانے کے لیے، تو دو الگ الگ چاول لیں گے تو آدھی بریانی نرم ہو جاتی ہے، آدھی بریانی جو ہے نا ہماری صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے بنانے میں بھی، شرابوں میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک کھاری ہے، ایک پھیکی ہے، ایک میٹھی ہے، ایک جو ہے نا پکی ہوئی، ایک پکی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک کی خاصیت الگ ہوتی ہے، پکنے کا ٹائم ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دو چیزوں کو ملا کے شراب نہ بنایا جائے، ہو سکتا ہے کہ تم نبیز سمجھ کر پی رہو، اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا ہو۔ اور یہ حکم ائمہ ثلاثہ کے ہاں بڑا سخت ہے، آج بھی یہ حکم ان کے ہاں ہے کہ دونوں چیزوں کو بنا کر نبیز وغیرہ نہیں بنائی جا سکتی، جائز ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن فقہ حنفی میں جو ہے نا یہ جائز ہے، اسی گنجائش ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بطور یعنی کراہت کے اشارہ فرمایا ہے، جواز عدم جواز کے بارے میں نہیں، یا پھر یہ حکم ابتدان تھا، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا تھا، جس وقت شراب کی ممانعات کے سخت احکام نازل ہو رہے تھے، برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا، دیو چیزوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا، پینے کے بارے میں ممانعات فرما دی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت یہ حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ائمہ ثلاثہ کے ہاں آج بھی قائم ہے یہ حدیث، اور اسی پر عمل ہے کہ نبی اس طرح دو چیزوں کی بنانا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انی لاسقی عباد الحتا و عباد جانا تو سہیلا بنا البیضا خلیط بسر و تمر۔ میں ابو طلحہ کو، حضرت ابو دجانہ کو، سہیل بن بیضا کو پکے اور کچے کھجوروں کی جو ہے وہ نبیز بنا کر میں پلا رہا تھا، تو اچانک شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو میں نے اس کو پھینک دیا۔ وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنَّا نُعِدُّهَا يَوْمَ عِدٍ الْخَمْرَ۔ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا اس وقت ان کے لیے ساقی تھا، ان کو پلانے والا تھا، اور میں قوم ان میں سب سے چھوٹا بھی تھا، اور ہم اس وقت خمر جو ہے نا وہ تیار کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب بنا کر ملا کر پیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات فرما دی کہ ملا کر پینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، دو چیزوں کو ملا کر نبیز نہ بنائی جائے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی سے، ابو داؤد میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ خود متعدد چیزوں کی نبیز پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہدایت رضی اللہ عنہ خود فرما دی ہیں کہ ہم کھجور ڈالتے تھے، پھر بعد میں اس میں جو ہے نا منقع بھی ڈال دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو پینے کے لیے دیتے تھے، اور کبھی پہلے منقع ڈال کر پانی میں بھگا دیتے تھے، اس کے بعد کھجور ڈال کر پلایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا بھی ہے۔ یہ ممانعات صرف احتیاط کے طور پر ہے کہ کہیں نشہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزبیب والتمر والبصر والرطب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیب اور یعنی किशमिश से और खजूर से, पके हुए खजूर और ताज़ा खजूरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, यानी इनके नबीजों के बनाकर पीने से रोका है। उसके बाद रिवायत है हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यजमा बैन अत्तमर वज़्ज़बी वत्तमर वज़्ज़बी वयुम्बत कुल वाहिद मिनहुमा अला हिदा। इसमें भी यही मजमून है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों को एक साथ मिलाकर खाने से पीने से जो है ना मना फरमाया। यहाँ एक बात है नबीज बनाने का, उसकी वजह और रीज़न तो ये है नशा पैदा होने के जल्दी इम्कान होता था। दूसरा यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी बाब में ये भी जिक्र करना चाहते हैं कि दो सालनों को मिलाकर जो है ना नहीं बनाना चाहिए, दस्तरखान पर नहीं रखना चाहिए। इसका रीज़न क्या हो सकता है, वजह क्या है? तो जवाब ये है, मुफ्ती सईद साहब पारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजह ये लिखी है, फरमाते हैं कि इसमें इसराफ़ वाला पहलू पाया जाता है, कि इसके अंदर जो है तवस्सो वाला पहलू पाया जाता है। ये मुसलमान की शान की शायन शान नहीं है कि अपने दस्तरखान में जो है ना वो पिसादगी रखे, सादगी पर इक्तफा करें, कम चीज़ों पर इक्तफा करें, जो उसके पास मौजूद है उसी पर इक्तफा करें। तवस्सो की वजह से आदमी फिर दुनियादारी में पड़ जाता है। फिर तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तरखान पर एक मरतबा जैतून भी था और उसके अलावा एक और भी चीज़ थी। तो गालिबन हज़रत अनस या कोई और सहाबी, उन्होंने देखकर फरमाया कि अल्लाह के नबी ने तो दस्तरखान पर दो चीज़ों के रखने से मना फरमा दिया। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसके आज के बाद से फिर मैं कभी दस्तरखान पर दो चीज़ें नहीं रखूँगा। अगर जो है जैतून होता था तो नमक नहीं रखते थे, नमक होता था तो जैतून नहीं रखते थे। ये सहाबा इकराम का मिजाज था। हमारे खाने जो है जितने ज़्यादा पुरतकल्लुक होते हैं, अगर ये सहाबा के ज़माने में हुआ तो पता नहीं क्या जो है हमारे बारे में वो सोचते। छोटी छोटी दावतें ही बड़ी पुरतकल्लुक हमारी होती हैं। तो वो और जो खाना वो खाते थे वो खाने का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। नमक से कौन खाएगा आज के ज़माने में खाना? तो सिर्फ़ जैतून से रोटी कौन खाएगा आज के ज़माने में? सिर्फ नमक से रोटी कौन खाएगा? हज़रत उमर खा रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं, वक्त के बादशाह भी हैं, लेकिन खा रहे हैं। बाद में खैर ये ममानात जाहिर सी बात है कि जाहिदाना ज़िंदगी है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है ना तवस्सो भी है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में थोड़ा सा वसात हो गई थी, दस्तरखान भी कुशादा हो गए थे काफ़ी। हज़रत अली के और हज़रत मुआविया के ज़माने में जब लड़ाई हुई, मुशाजरात हुए, उनके इख्तलाफात हो गए, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों साइड थे। वो जो है जब खाने का वक्त होता तो हज़रत मुआविया के पास पहुँच जाते थे, जब नमाज़ का वक्त होता तो हज़रत अली के पास आते थे। वो कहने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, कभी इधर नज़र आ रहे हैं कभी उधर नज़र आ रहे हैं, खाने का टाइम वो दीवान पहुँच गए। तो कहने लगे कि असल में खाना मुआविया के रस्ते पर बड़ा उमदा होता है, तो इसलिए खाने का टाइम वो दीवान पहुँच जाता हूँ और नमाज़ अली के यहाँ अच्छी होती है तो नमाज़ के वक्त में इधर आ जाता हूँ। इससे समझ में आता है कि सहाबा इकराम के दिल भी कितने साफ थे और उनकी जो लड़ाई थी वो बौज़ो इनाद की बुनियाद पर नहीं थी। उनकी लड़ाई इक्तदार की बुनियाद पर नहीं होती थी। उलेमा ने लिखा है कि वो इश्तेहार की बुनियाद पर थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उनकी शहादत के बाद इख्तलाफ पैदा हुआ कि भाई इनका क़िसास किया जाए। हज़रत अमीर मुआविया चाहते थे कि फ़ौरन ही जो है ना क़िसास देना चाहिए। हज़रत अली कहते थे कि भाई ममलकत का निज़ाम तो समझ जाए, अभी अभी तो इमारत जो है ना, यानी इमारत सुपुर्द करनी है, इमारत के निज़ाम को कायम करना है, अमीर बनाना है और हालात जो है ना पूरा अभी दुश्मनों का माहौल बना हुआ है, उनको निमटना है, उनको पहचानना है और उमूर ममलकत को संभालना है, तो इसलिए फ़ौरन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त इसके लिए चाहिए। इस दुनिया पर लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ, अभी मुनाफिकीन ने जो है ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर चाह ही रहे थे वो कि भाई किसी ना किसी तरह लड़ा दिया जाए, तो फिर ये यहूदी और मुनाफिकीन जो है पीछे लगकर लड़ाई इन लोगों ने शुरू कर दी। हत्ता कि एक मौका वो भी था कि सुलह होने के बिल्कुल करीब थी, रात में सुबह के करीब में तहज्जुद के वक्त में इन लोगों ने देखा कि सुलह हो गई तो फिर ये मुसलमानों का खसारा नहीं होगा, तो हज़रत अली के लश्कर में जाकर हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर पर उन लोगों ने हमला किया। हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर में जाकर हज़रत अली के लश्कर पर जो है ना उन लोगों ने हमला किया, नतीजे में फिर लड़ाई बढ़ गई, वरना तो सुलह हो गई थी उसी रात, यहाँ तक नौबत आ गई थी। खैर ये दुश्मनान इस्लाम जो है ना शुरू ही से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशों में साजिशों में रहे हैं, ये तारीख का एक पहलू भी है। खैर उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत जो जिक्र फरमाई है वो ये है, बाब शुर्बिल लबन व क़ौलिल्लाह तआला मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनिन खालिसन सायिक़िन लिश्शारिबीन। ये बाब दूध के पीने के बयान में है और अल्लाह तबारक व तआला के इस क़ौल के बयान में है कि मिन बैनि फरथिन व दमिन लबन खालिसन सायिक़िन लिश्शारिबीन। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूध के नेमत होने का जिक्र फरमाया और अपनी कुदरत का भी जिक्र फरमाया कि कैसे हम जो है ना दूध को पैदा फरमाते हैं, बड़ी अजीब व गरीब है वो। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब जानवर चारा खाता है, उसकी तरतीब जो निज़ाम है, तो चारा खाने के बाद उसके चारे का एक हिस्सा वो होता है जो जायद होता है, जो बेकार होता है, तो वो तो गंदगी की शक्ल में बन जाता है और मैदे के नीचे हिस्से में चला जाता है। और एक हिस्सा वो होता है जो खून बनता है, तो खून का हिस्सा जिगर जो है ना, उसको रगों में पहुँचा कर रगों के जरिए पूरे खून में फैला, पूरे जिस्म में फैला देता है। और जो दूध है वो दरमियान में रह जाता है, फिर उस दूध को अल्लाह तबारक व ताला जानवर के थन में पहुँचा देते हैं, फिर थन के जरिए इंसान उसको निकालता है, उसके बाद इस्तेमाल करता है। तो वो दो गंदगियों के दरमियान में अल्लाह तबारक व ताला ने दूर को पैदा फरमाया और बाकी का शक्ल भी हमारे सामने पेश फरमाया। क्या निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला का है, अजीब अल्लाह पाक की कुदरत है। यानी नीचे गंदगी, ऊपर खून है, बीच में दूध है, और ये पैदा हो रहा है एक ही चीज़ से। खून भी पैदा हो रहा है तो एक ही चारे से, गंदगी पैदा हो रही है वो भी चारे से, दूध पैदा हो रहा है वो भी चारे से, और फिर तीनों अपनी अपनी जगह अलग है। गंदगी के साथ खून नहीं मिल रहा, खून के साथ दूसरी गंदगी नहीं मिल रही है, और उनके साथ जो है ना दूध नहीं मिल रहा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपनी इस नेमत का जिक्र फरमाया कि कहाँ से दूध बनाकर हम तुमको कैसे पहुँचा रहे हैं, हमारी नेमतों को याद करो। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन उसरिया बिही बिक़दाहि लबनिन व क़दाहि ख़म्रिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेराज की रात में, इस वक्त आपको मेराज करवाई गई थी, इसरा करवाई गई थी, एक दूध का प्याला और एक शराब का प्याला लाया गया। और आप सल्लल्लाहु, रिवायत इतनी है यहाँ पर, लेकिन दीगर रिवायत के अंदर से राहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दूध के प्याले को दे लिया और तनावुल फरमा लिया। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि असब तलफितरा, आपने जो फितरत है उसको इख्तियार कर लिया। अगर आप जो है ना शराब इस्तेमाल करते, शराब को उठा लेते, तो फिर आपकी उम्मत गुमराह हो जाती है। रिवायत इससे पहले भी आई है। तो बहरहाल हुजूर ने दूध पिया उस मौके पर भी, उसके अलावा भी आम हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का इस्तेमाल फरमाते थे, सहाबा इकराम को देते भी थे। बड़ी नेमत है दूध जो अल्लाह तबारक व ताला इस उम्मत को अता फरमाए। दूसरी रवायत है हज़रत उम्मे फजल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं कि शक अन्नास फी सियाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा फअरसलतु इलैहि बिइनाइन फीहि लबनुन फशरिबा, लोग जो है अरफे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सिलसिले में शक में पड़ गए। तो फअरसलतु इलैहि बिइनाइन फीहि लबनुन, हज़रत उम्मे फजल फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के पास भेज दिया बर्तन जिसमें दूध था, फशरिबा, तो हुज़ूर ने पी लिया। यानी असल में एक तो अरफा था, उस मौके पर रोज़ा रखना है नहीं रखना है, ये हज का मौका है, आप हजरतुल वदा का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफे में ठहरे हुए हैं। अब लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम रोज़ा रखें या इफ्तार करें, रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, क्या किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अरफे में जो है ना हाजियों के लिए रोज़े का हुक्म नहीं है, और फिर इसके अलावा मुसाफिर भी हैं, मुसाफिर के लिए तो वैसे भी रोज़े की गुंजाइश होती है। तो लोगों को जानना था, अल्लाह के नबी से पूछने के सिलसिले में झिझक हो रही थी कि पूछें तो कैसे पूछें हुज़ूर से। बस ख़वातीन बड़ी तेज़ होती हैं, तो उनका फजल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी जहानत का सबूत दिया और सीधा हुज़ूर के पास दूध ही भेज दिया, पूछा नहीं, दूध भेज दिया। अगर हुज़ूर पी लेंगे तो पता चल जाएगा कि रोज़े से नहीं है, नहीं पियेंगे तो पता चल जाएगा कि रोज़े से हैं, क्योंकि दूध को, दूध हुज़ूर का मरहूब भी था, पीते भी थे, और कोई हदिया आता था तो अल्लाह के नबी रद्द नहीं फरमाते थे। वही तो उम्मे फजल ने भेज दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया और पी लिया। लोगों को पता चल जाएगा कि रोज़े से नहीं है, तो फिर सहाबा ने भी रोज़ा छोड़ दिया। उसने हाजियों के लिए आरफे का रोज़ा नहीं है। तो आगे भी रिवायत यही है। उसके बाद रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जा अबू हुमैद بقراح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو ان تعرض يا ولو ان تعرض عليه عودا, ابو حمید رضی اللہ عنہ دودھ کا ایک پیالہ مقام نقیع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کھلا لا لیا, تو حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بھئی اللہ خمرته, تم نے اس کو ڈھانگا کیوں نہیں, ولو ان تعرض عليه عودا, اگر سے کہ تم اس پر کوئی ایک آڑی شکل میں ایک لکڑی رکھ دیتے تو بھی بہتر ہو جاتا, کافی ہو جاتا. तो एक तो यह है कि दूध का लाना और दूध का अल्लाह के नबी को देना इससे साबित होता है, और इमाम बुखारी यही साबित करना बात जिक्र करना चाहते हैं कि हुजूर ने इसको इस्तेमाल फरमाया, सहाबा इकराम लाते भी थे हुजूर के पास. और दूसरा यह है कि एक खाने पीने की चीज़ों से मुतालिक एक अदब अल्लाह के नबी ने इस हदीस पाक में जिक्र फरमाया है, वो ये है कि जो बर्तन होते हैं खाने पीने के उनको ज़रूर ढांग लेना चाहिए. एक तो शक्ल यह है कि मुकम्मल बर्तनों को ढांग दिया जाए, तो इसके ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर किसी के पास मुकम्मल बर्तन नहीं है ढांकने के लिए, तो फिर कोई लकड़ी क्यों ना हो ऊपर जो है ना बर्तन के ऊपर रख देनी चाहिए, ताकि शरीयत के इस हुक्म की तामील हो जाए. इसकी हिकमतें और मसलहत क्या है, तो एक तो मसलहत यह है कि जब किसी बर्तन को बिस्मिल्लाह कहकर जो है ढांक दिया जाता है चाहे लकड़ी क्यों ना हो, तो फिर शैतान उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता. हदीस में है कि एक मरतबा जब बर्तन को मुकम्मल ढांक दें आप, या फिर जो है सिर्फ लकड़ी भी रख दें बिस्मिल्लाह कहकर, या कोई और चीज़ हमारे पास चमचा होता है या छुरी होती है या कोई और चीज़ होती है वो भी अगर आप रख देंगे तो शैतान की मुदाखलत उसमें नहीं होती, अगर उसमें तसरुफ करना चाहे तो नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भागने का हुक्म दिया वो इस वजह से भी दिया कि हशरातुल अर्ज़ जो होते हैं यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे हिफाजत होती है, जो हवाओं में फिर रहे होते हैं हो सकता है कि वो उसमें गिर जाए तो ख़राब हो जाए, मक्खी मच्छर चले जाए तो उसकी वजह से जो है ना पीना थोड़ा सा नागवार हो जाए, तो ये भी हिफाजत इसमें पेश नज़र है। एक और वजह मुल्ला आरी रहमतुल्लाह ने लिखी है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आसमान से जो है ना एक बला नाजिल होती है, और जिस जो बर्तन खुला हुआ होता है ढका हुआ नहीं होता तो उस बर्तन में उसका असर पहुंचता है फिर, तो इसलिए अगर ढाक दिया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से निज़ाम यह है कि उस बला से अल्लाह तबारक व ताला खाने की हिफाजत फरमा देती है। तो बहरहाल खाने की चीज़ों से मुताल्लिक बर्तनों से मुताल्लिक ये अदब है जो यहाँ बयान किया गया, और अगली रिवायत में भी यही मजमून है इंशाअल्लाह। तबारक व ताला मुझे और आपको सही है।